ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੇਂ ਆਪ ਸਭੀ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। जिस उत्साह के साथ आप सभी इन पहाड़ी इलाकों से या मैदानी इलाकों से चलकर आए हैं, एक ऐसे उत्तम भाव हृदय में लिए हुए, जो भाव सदा से परोपकारी भक्तों और संतों के युगों युगों से रहे हैं, जो मानव कल्याण के लिए हैं, जो अपने जीवन के उत्थान के लिए हैं, ऐसी भावनाओं से युक्त होकर आप सभी संत समागम में उपस्थित हुए हैं, जो प्रांतीय लेवल के ऊपर देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में कई वर्षों से आयोजित होते आ रहे हैं। जैसे पहले भी आप जानते ही हैं और चर्चा भी हुई कि इस प्रकार के प्रांतीय इलाकाई समागम महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड में, इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन में भी, कभी राजस्थान, कहीं गुजरात का समागम या फिर सदर्न स्टेट्स का समागम, इसी प्रकार से हरियाणा का, हिमाचल का, तो समय समय के ऊपर ऐसे समागमों के ये आयोजन होते आ रहे हैं। और उसी समागमों की लड़ी में आज उत्तराखंड भी शामिल हुआ है, जो कि ग्यारह तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का समुच्चा एक समागम हुआ करता था। पिछले बरस उत्तर प्रदेश में समागम नहीं हुआ और अब की बार लखनऊ में समागम हुआ, और उससे पहले ऋषिकेश की तारीखें निश्चित हो चुकी थी। और इस प्रकार से आज ये प्रथम समागम उत्तराखंड का जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, कितने सहयोग इसमें मिले हैं, इस मानवता के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कमज़ोर होती हुई इंसानियत को शक्ति देने के लिए कितने कितने उपकार और योगदान ये स्थान स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं। आज भी आपने देखा कि माननीय यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी, केंद्रीय मंत्री रावत जी भी, और भी विधायक जी, एक्स मिनिस्टर साहब भी, और भी अनेकों ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने लगातार इसमें योगदान दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खुदगर्जी वाला मंतव नहीं है, कोई ऐसी सीमित सी सोच नहीं है। यहाँ पर व्यापक सोच रखकर आप सभी सारे संसार के भलाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हर एक ऐसे योगदान का महत्व होता है, क्योंकि जितना व्यापक अंधकार है, जितनी व्यापक भ्रांतियाँ और भ्रम हैं, उतना ही ज़्यादा उपकार की ज़रूरत है। जैसे जितनी ज़्यादा आग लगी हो, थोड़ी सी आग लगी होती है तो कहते हैं एक दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चली गई हैं, लेकिन अगर पूरा ही इलाका आग की लपेट में आ जाए तो अक्सर हम खबरों में सुनते हैं वहां पर 36 गाड़ियां पहुंच गई हैं, 50 पहुंच गई हैं, आसपास के इलाकों से भी मंगवा ली गई हैं, क्योंकि आग इतनी व्यापक हो चुकी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस दुनिया में, इस संसार में, ये भी एक आग इतनी व्यापक हो चुकी है, नफरत की, वैर की, घृणा की, ईर्ष्या की, जिसमें इंसान जल रहा है और जला रहा है। तो ऐसी आग को शांत करने के लिए संत महात्मा, भक्तजन, गुरु पीर पैगंबर ही युगों युगों से साधन बने हैं। इसीलिए पहले भी कहा गया कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर ये संत प्रवृत्ति जल के समान ना होती तो ये तो वरना वरन ना भावे, खै खै जले बांस संग्यारा, ये तो जलने और जलाने का काम तो हो ही रहा है। जुबान के द्वारा भी जलन दी जाती है, जख्म दिए जाते हैं, और व्यवहारिक रूप में भी यही कुछ किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संतजन, गुरु पीर पैगंबर इंसान को इसी रास्ते पे चलाने के प्रयास करते आ रहे हैं, जो रास्ता हर इंसान के भलाई के लिए है। क्योंकि भक्तजन अपने तक सीमित नहीं रहते हैं, जैसे कहा कि व्यापक सोच, यूनिवर्सलिज्म में यकीन रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक ही यूनिवर्सल परम पिता है जो सारी कायनात, सारे संसार को बनाने वाला है, जिसका नूर आत्मा के रूप में हर घट में बसता है। तो इस यूनिवर्सल अप्रोच और यूनिवर्सल सोच को रखते हुए भक्तजन सबका भला मांगते आए हैं, भला करते आए हैं, कि तेरे पाणे सर्वत का भला, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि सारे संसार को अपना मानते आए हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सल सत्य को जाना है, इस परम आत्मा, इस परम तत्व को जाना है, इसीलिए माना है। जाने बगैर ये मानना मुमकिन नहीं है। अगर जाने बगैर मुमकिन होता तो जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने श्रवण किया कि केवल नारों से कोई एक नहीं हो जाते हैं, पीछे भी दास ने जिक्र किया और आप लगातार ये जिक्र सुनते आ रहे हैं कि वो नारा कितना बुलंद हुआ था एक समय पे कि चीनी हिंदी भाई भाई। उस वक़्त चाइना के अव्वल दर्जे के लीडर हिंदुस्तान आए हुए थे और यही नारा बुलंद किया गया, लेकिन वही नेता जब वापस अपने मुल्क लौटे, शायद जाते ही उन्होंने हिंदुस्तान पे हमले के ऑर्डर भी कर दिए। तो ये नारों के द्वारा नहीं होने वाला है। तो इसलिए महापुरुष संतजन कहते हैं कि अगर जान गए होते सभी तो कोई कारण नहीं कि वही बात के वरना वरन ना भावे, फिर क्यों एक जाति वाले दूसरे को बर्दाश्त ना करें, दूसरी भाषा वाले के प्रति सेंसिटिव हों। कोई किस पैगंबर को मानता है ये बर्दाश्त नहीं, कौन किस स्क्रिप्चर को पढ़ता है उसको नीची दृष्टि से दूसरे को देखा जाता है। नाना प्रकार के ऐसे भेदभाव, भेद वाले भाव ये मन में रख कर ये इंसान इस धरती पे विचरण करते आए हैं। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जाना नहीं, इसलिए मान नहीं पा रहे हैं। कबीर जी जान गए इसीलिए मान लिया कि काशी काबा एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। जैसे ऋषिकेश हरिद्वार, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं श्रद्धा लिए हुए, आस्था लिए हुए, इसी प्रकार से उस काशी नगरी में वाराणसी, बनारस, वहाँ पर भी उस तट पर रहने वाले लोग और पूजा अर्चना करने वाले लोग, तो कबीर जी भी वहीं। लेकिन कबीर जी और बाकी लोगों में बहुत भिन्नता है। कबीर जी को वो जागृति आ गई है, कबीर जी को वो नज़र मिल गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, कोई अंतर कोई फर्क नहीं माना है कि लोहा तो एक है, घड़ने में है भेद, ताई का बख्तर बने और ताई की शमशेर, कि उसी लोहे से बख्तर भी बनता है, शमशेर भी बनती है, एक ही मिट्टी से माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे, कि जान लिया कि कुम्हार भी एक है और मिट्टी भी एक है। तो इसीलिए कबीर जी ने तो जाना, इसलिए मान लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना था उनके लिए दीवारें बरकरार रहीं, उनके लिए एक दूसरे को नीची दृष्टि से देखना वो जारी रहा, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, इनटॉलरेंस ये कायम रही। और ये केवल कबीर जी के वक्त की बात नहीं है, जैसे ये भी आज आपने सुना कि अंधकार और उजाला ये हर युग में रहा है, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां और फितरतें रही हैं, तो आज भी वही स्थिति है। आज भी वही स्थिति है कि एक जानकर मान रहे हैं और एक जाने बगैर मान भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर जानने के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि एक परम सत्य को जानो, इस ईश्वर पारब्रह्म निराकार को जानो, इस हकीकत को जानो कि हम एक ही कुटुंब से हैं, हम एक ही कुंभ से हैं, एक ही परिवार का अंग है। ये जान लिया जाए, when this realization takes place, जैसे वो भी मिसाल आपने सुनी है, when a fruit grows out of the flower, the petal of the flowers fall by themselves, that's a natural process, कि एक फूल में से जब फल निकलता है तो फूल की पंखुड़ियां अपने आप गिरने लगती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक सूर्य उदय होता है तो सवेरा हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार से जब ये बोध हो गया तो फिर ये भेद वाली भाव जो है ये मिट जाते हैं, जब ये ज्ञान उजाला हो गया, अज्ञानता रूपी अंधकार और उस अंधकार के ऊपर आधारित जितनी भी मान्यताएं हैं वो भी उसी तरह से गिर जाती हैं। इसीलिए महापुरुषों ने इस जानकारी, इस बोध के ऊपर, इस रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो इंसान मान नहीं पाता है। लाख जोर कोई लगा ले, बल्कि जो ऐसे पहलू सामने रख भी रहे हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी कल ही आपने गुड फ्राइडे मनाया, दुनिया भर में हज़रत ईसा मसीह जी को जो यातनाएं दी गईं दिल को दहला देते हैं, कि शरीर के हर रंग में किस तरह से कांटे और कील गाड़े गए हैं, जिन्होंने केवल यही जागृति लाने की कोशिश की, वही जानकारी की बात। इसीलिए बाइबल में आता है कि नो गॉड ये वर्शिप, जानो जानकारी, रियलाइज द ट्रूथ, जानो, नो गॉड ये वर्शिप, जानो। जैसे आज भी कर्म कांड इत्यादि या ऐसी क्रियाओं के ऊपर कितना जोर दिया जाता है, और उस वक़्त भी दिया जाता था, लेकिन हज़रत ईसा मसीह जी ने देखा कि ये क्रियाएं तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं। दे आर वर्शिपिंग बट दे डू नॉट नो द ट्रू एंटिटी ऑफ गॉड होम दे आर वर्शिपिंग। तो ये जानना उन्होंने देखा, इसीलिए कहा कि जानो, जानकारी को शामिल करो, नो गॉड ये वर्शिप। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से जब ये बोध हो जाता है, वो दृष्टि मिल जाती है, जैसे वो भी मिसाल आपने कई दफ़ा सुनी है, दास को भी शायद 15 साल बाद जहन में आ गई, उससे पहले कई दफ़ा उसको दास ने दोहराया कि किस प्रकार से एक पिता था, उसका बेटा, और पिता का इस प्रकार से निधन हो गया। अब बेटे की उम्र भी कम है और बड़ी लाचारी सी महसूस कर रहा है। तो घर गया और घर ने, उसकी माता ने कहा कि अब क्या करेंगे, बहुत लाचारी है। तो उसने कहा कि ये एक हीरा है, ये मुझे मिल गया, जब सामान थोड़ा मैंने देखा तो ये जाकर बेच दे और हमारी मुश्किल के दिन ख़त्म हो जाएंगे, एक साधन सा बन जाएगा गुजरान का। तो वो गया, तो गया तो एकदम पहले सोचा बाज़ार जाऊं, फिर ख्याल आया कि मेरे ही जो चाचा हैं वो सुनार का ही काम करते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूं। वो भी मेरी मजबूरी को जानते हैं, एक ही परिवार का अंग हैं, तो अच्छा इसके बदले में मुझे पैसे दे देंगे। तो जब वहाँ गया कि ये हीरा मैं लाया हूँ, तो उसके चाचा कहते हैं जो सुनार हैं, देखा उसको, कहा कि बेटे ऐसा करो कि इसको अभी संभाल के रख लो, आप मेरे पास दुकान पे काम करना शुरू कर दो, मैं उसके एवज में आपको कुछ खर्चे के लिए देता रहूँगा, आपका गुजरान चलता रहेगा। तो वो वहाँ पर चला गया, जाने लग पड़ा उस दुकान पर। कुछ महीने कुछ साल बीते तो ध्यान में आया कि वो जो हीरा वापस चाचा ने कहा था कि घर में रख दो जाके अपने, तो अब मैं उसको बाज़ार में बेचता हूँ। आज दिन बदल गए हैं, हर चीज़ की कीमतें इतनी आसमान को छू रही हैं, सोने की इतनी कीमत बढ़ गई है, तो हीरे के भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। अच्छा हुआ मेरे चाचा ने उस वक़्त बेचने नहीं दिया, तो अब मुझे ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। घर गया, अलमारी खोली, उसमें से वो हीरा निकाला, एक मिनट के लिए गौर से देखा, ज़मीन पे पटक कर ज़ोर से फेंक दिया। बड़ा गुस्से में चाचा के पास जाता है, कहता है कि आपने ये क्या मेरे साथ किया, मैंने देखा कि ये नकली है, ये असली है नहीं, कांच का है, बनावट हीरे जैसी है, तो आप उस वक़्त नहीं कह सकते थे कि ये कांच है, हीरा नहीं है। तो उसके चाचा ने कहा कि मैंने इसीलिए उस वक्त तुझे कहा कि तू मेरे पास दुकान पे आना शुरू कर दे, क्योंकि उस वक़्त अगर मैं ये कहता कि ये कांच है, तुमने कहना था कि चाचे के नियत में खोट आ गई है, इसने हीरा अपने पास कांच कह के रख लेना है और मुझे कुछ देना नहीं है। तो उस चाचा ने कहा कि मैंने इसीलिए तुझे कहा कि मेरी दुकान पे आना शुरू कर दे, अब तूने उसे ज़मीन पर इसलिए पटका क्योंकि अब तुझे वो नज़र मिल चुकी है, तूने खुद परख कर लिया, अब किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं थी तुझे, तूने खुद ही देखा कि ये तो हीरा है ही नहीं, वरना कहाँ पर तू उसको ज़मीन पर फेंकने वाला था। लाख कोई कहता, तू जिसके पास भी जाता कहते ये तो बेईमान हुए पड़े हैं, और जब मैंने तुझे ही नज़र देगी तो अब दे दी, तो किसी और से तुझे उस प्रकार से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं कि ये कांच है कि हीरा है। तो बात हो रही है जानने की, रियलाइजेशन, ट्रू नॉलेज। जब ये बोध हो जाता है तभी वास्तविकता में राम रहीम एको जान, ये एक अवस्था हमारी, ये नज़रिया हमारा बन जाता है। फिर मज़ो मिल्लत की दीवारें कोई मायने नहीं रखती हैं, फिर दीवारें रहती नहीं हैं, ये सब दीवारें गिर जाती हैं। फिर कोई भी, जैसे गंगा 1987 या 88 में दास को गौमुख जाने का मौका मिला, और जहाँ से गंगा आरंभ होती है उस ग्लेशियर में जाने का अवसर मिला, और लगातार ये धारा बहती चली जा रही है, यहाँ से भी गुजर रही है इतने व्यापक रूप में, और कितना ट्रैवल करती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों मील का सफ़र तय करती है, और रास्ते में पता नहीं कितने कौन इसमें से जल ग्रहण करते हैं, अपने खेती को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं, कितने पशुओं को पिलाते हैं, कितने खुद सेवन करते हैं, नहाते हैं, और उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, उसमें कौन जाति वाले, कौन वर्ण वाले, कौन भाषा वाले, कोई सवाल नहीं, उसी से भर पी रहे हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है। तो ये भी अनंत से बहने वाली धारा, ये जो सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, जो इसका बोध हासिल कर लेते हैं, वाकई इसको इसी रूप में देखते हैं, फिर वहाँ पर कुछ बांटने का सवाल नहीं रहता है। जैसे कि होता आया है कि जल तो ग्रहण कर लिया, एक मुस्लिम परिवार वालों ने, एक हिंदू परिवार वालों ने, और अक्सर पहले वो भी समय थे जब देश का विभाजन हुआ, तो वहाँ पर स्टेशंस पे भी बेचने वाले पानी ये कहा करते थे कि ये हिंदू का पानी और दूसरे के ये मुस्लिम का पानी, तो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस पानी में हिंदूपन क्या है और मुस्लिमपन क्या है। वही H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्राएं जिससे जल बनता है, जो हिंदू का पानी या मुस्लिम का पानी कहा जा रहा है, उसमें कोई मिनरल, कोई बाद में कोई जोड़ा तो है नहीं, एज इट इज़ जाके बर्तन में अपने घर में रख दिया है, तो उसमें कोई अंतर तो आया नहीं है। लेकिन हिंदू का पानी, मुस्लिम का पानी इसलिए नाम दे दिए गए क्योंकि उस घर में गए, पानी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो वैसे का वैसा ही है, उसी गंगा से भरा है, लेकिन अब उसके साथ नाम जुड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो वाकई ही ऐसी सत्य सच्चाई को जान जाता है, उसके लिए फिर ये भेद नहीं रहते हैं, उसको बोध हो जाता है। और फिर अगर बोध हो गया, भेदभाव नहीं है, फिर भेदभाव नहीं है तो फिर नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं है तो घृणा नहीं है, फिर क्या है? फिर प्यार है। और महापुरुष संत जनों ने यही तो जोर लगाया कि प्यार करो, प्यार की दौलत बांटो, प्यार से ही इस गुलशन को सजाओ और संवारो। नफरत वीरानगी लाती है, नफरत उजाड़ती है, प्यार सजाता है, प्यार राहत देता है, प्यार बसाता है। तो इसलिए ये प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये कबीर जी ने ही केवल नहीं कहा, ये तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने इसी प्रेम की तरफ ही अग्रसर किया है कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। ये सब के उद्घोष हैं कि प्यार से ही जीवन जीना है हमने, प्यार से युक्त होकर प्रेम भरा व्यवहार करना है। तो अगर घृणा और नफरत मिटेगी तभी तो प्यार हमारे हृदयों में बसेगा, और अगर घृणा और नफरत है तो प्यार कहाँ पर बसेगा इस दिल में, नहीं बस पाएगा। तो इसलिए इस घृणा और वैर, ईर्ष्या, नफरत, इस भेद वाली भावनाओं से उभर कर इस संसार की यात्रा को ये तय करना ज़रूरी है, तभी ये धरती सुंदर रूप धारण करेगी, तभी ये धरती जन्नत बनेगी, तभी हर कोई राहत की महसूसियत करेगा, तभी ये चारों तरफ जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो हमें एक देखने को प्राप्त होगा। वरना तो कोएग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन पीसफुली नहीं। शांति से नहीं, अशांति के साथ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर भाषा वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर धर्म वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से जो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होता है कि शांति के साथ हम रहें, चाहे फिर भाषाएं अलग हो, चमड़ी का रंग अलग हो, टोपी हो या पगड़ी हो, कोई सवाल उसका नहीं है। इन सब सवालों से ऊपर उठकर एक उसी दृष्टि से युक्त होकर हम देखते हैं, जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे कि पहले हमारी अज्ञानता में ये अवस्था थी कि पहले हम कौम, मेरी कौम का है, मेरी जाति का है, मैंने पगड़ी पाई है, इसने भी पाई है, इसलिए ये मेरा अपना है, ऐसी दृष्टि हम रखते थे। लेकिन अब वो सही दृष्टि मिली है जो केवल लिबासों और भाषाओं और जातियों तक नहीं सीमित रह जाती। वो दृष्टि उससे पहले वो एक खुदा के परिवार के अंग के रूप में उसको देखती है, और इसलिए वहाँ पर कोई भेद नहीं है। परमात्मा जब इसकी कोई जाति नहीं है तो इसके अंश उसमें भी कोई जाति नहीं है। सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य को इस प्रकार से हम देखते हैं, सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है, सूरज हम तक नहीं पहुंच पाता, किरणें पहुंचती हैं, और किरणें पहुंचती हैं तो इस प्रकार से सूर्य ही हमारे लिए उपयोगी हो रहा है, क्योंकि सूर्य के कारण ही किरणें हैं। अगर सूर्य ना हो तो किरणें कहाँ पहुँचे यहाँ पर। तो इस प्रकार से सूर्य का भेद, सूर्य की कोई जाति नहीं है तो इसके किरणों की भी फिर कहाँ पे जाति आ गई। जब एक परमात्मा, एक परमपिता है तो फिर इसके अंशात्मा इसमें क्यों भेद हो गए, जब वो इन मानव शरीरों में आती है और वहाँ पर भेदभाव शुरू हो जाते हैं। एक दंपति इस प्रकार से कई बरस हो गए, उनके घर औलाद नहीं, बहुत परेशान दुख महसूस करते थे, और जब सब इलाज कर लिए तो लगा कि अब मुमकिन नहीं है, तो एक तरीका है कि अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं एक बच्चा, उसको परवरिश करेंगे अपना बच्चा समझकर। अब बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए भी खोज शुरू की, और अचानक ही उनके मित्र का फ़ोन आया कि यहाँ मेरे जानकार हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, उनके बच्चा हुआ, उनके पहले ही बहुत बच्चे हैं, 5-7 तो पहले ही हैं, वो गोद देना चाहते हैं। तो इसने सुना, कहने लगे हम तो पिछले कितने दिनों से खोज कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छे परिवार का कोई बच्चा मिल जाए, हम अडॉप्ट कर लें। तो उसने कहा कि जो बच्चा आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहने लगा कहाँ आप जहाँ रहते हो वहीं हो, कहते नहीं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। कहने अच्छा महाराष्ट्र में रहते हैं तो कौन है वो, कहने लगे मराठी हैं। कहने लगे अच्छे मराठी परिवार का बच्चा है, तो चलो हम बच्चा तो ले लेंगे क्योंकि आपके जानकार का बच्चा है, तो मैं और मेरी पत्नी को अब मराठी सीखनी पड़ेगी। अब वो दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि क्या ऐसी बातें कर रहे हो, उस बच्चे की तो कोई ज़ुबान नहीं है, ये तो बाद में दुनिया देती है ज़ुबानें, उस बच्चे को क्या मराठी, क्या स्वीडिश, क्या जर्मन, क्या फ्रेंच, क्या स्पैनिश, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, उस बच्चे को तो कोई, ये तो बच्चा जो जिस परिवार में पलते हैं वो सीख जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे को तो कोई भाषा उस तरह की दे के भेजा नहीं है मालिक ने। और इसी तरह से जातियाँ ये भी हमने दुनिया में ही दी गई, ये सारे मैन मेड बैरियर्स जिसको हम कह रहे हैं, ये सब इंसानों की इजाद है। प्रभु परमात्मा ने तो एक ऐसा ही रूप बनाया, एक मासूम से बच्चे के रूप में पांच तत्व एक आत्मा के रूप में इस शरीर में डाली। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने यही इंसान को ये समझाने के प्रयास किए हैं, ताकि इंसान जितनी जल्द समझ जाए इस बात को, उतनी जल्द ही ये उस रास्ते पे चल निकलेगा जो प्रेम का मार्ग होगा, जो भाईचारे वाला मार्ग होगा, जो सुकून और चैन शांति वाला मार्ग होगा। उस मार्ग पर ये चल निकलें, और अगर सारे ही वाकई इस रास्ते पे चल निकलें, तो फिर ये सारे ही दुनिया के हर मुल्क के ये वातावरण को एक शुद्धता और एक सुंदरता ये प्राप्त हो जाए। तो इसी भाव से यहाँ पर आज उत्तराखंड के इस ऋषिकेश में आप सभी उपस्थित हुए हैं इस संत समागम के अवसर के रूप में, जहाँ पर मिल बैठकर आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और ऐसे उत्तम भाव भी ये गढ़वाली कुमाऊँ भाषा में, अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में आप श्रवण कर रहे थे, जो सब आधारित थे इन्हीं पहलुओं के ऊपर, जिसकी हर इंसान के लिए अहमियत है। लेकिन बात केवल इतनी है कि कुछ एहसास कर लेते हैं कि मेरे लिए और हर किसी के लिए इन पहलुओं की अहमियत है, लेकिन कुछ हैं या कई हैं जो इसको एहसास नहीं करते कि ये कितने अहम पहलू हैं, इसीलिए उसको नज़रअंदाज करता है और फिर उसी संकीर्णताओं में उलझा रहता है, वही दुनियावी खेल खेलता रहता है, उन्हीं खुदगर्जियों में जीता है, वही जुल्म व सितम वाले भाव, वही दूसरे से छीनने वाली भावनाएं, दूसरे के हक को छीनने वाली भावनाएं, और इस प्रकार से पूरी तरह से विष का रूप बन जाता है, जहर का रूप बन जाता है, जो नुकसानदायक हुआ करते हैं। तो आओ साध संगत, यही एक शुभ कामना, यही अरदास, यही प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही ऐसी तौफीक दे, ऐसी एक जागृति दे, ताकि हर इंसान इस सच्चाई में जाग जाए, इस सच्चाई की तरफ ये जागरूक हो जाए, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, इसकी तरफ जागृत हो जाए, और इस तरफ जागृत हो जाएगा तो बाकी सब इसको मिथ्या लगने लग पड़ेगा, और वो सब मिथ्याएं जो कि उनका वास्तविकता कुछ नहीं थी, जैसे एक सपना होता है और एक जागरूक अवस्था होती है, तो वो स्वप्न जो है वो एक मिथ्या होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसी प्रकार से इस तरफ सत्य की तरफ जागरूकता अगर आ जाए, तो वाकई ही हम भी जान जाएंगे कि वो सब मान्यताएं, वो सब मिथ्या पे आधारित थी, और उस मिथ्या के कारण ही हम खामखा एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, जो सच्चाई थी ही नहीं, उसी में ही खामखाम उलझकर अपना सारा जीवन हमने बेकार कर दिया। तो अब ब्रह्म ज्ञानी हमारे जीवन में आए, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, पहले जो बीती सो बीती, पहले जो अवस्था थी वो थी, अज्ञानता उसका कारण था, लेकिन अब तो एक सही दिशा मिल गई है, और उस दिशा की तरफ बढ़ निकलते हैं, और औरों को भी उसी दिशा की तरफ ले जाने के लिए ये अपने योगदान देते हैं, जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी कि इस उपकार में, परोपकार में जो योगदान देते हैं और जो ये उपकार करते हैं नाना प्रकार से, इन पहाड़ी इलाकों में ही आप देख लें, अभी पीछे नेपाल में दास को जाने का मौका मिला, जहां पटना में समागम के बाद और लखनऊ समागम के बीच में 10-12 रोज़ थे, तो वहाँ पर नेपाल में जाने का, भिन्न भिन्न गाँव में और कस्बों में, शहरों में पहली दफ़ा जाने का मौका मिला। पहले भी गए तो कई दफ़ा हैं, लेकिन इस दफ़ा जितने भी स्थान थे सब पहली दफ़ा ही वहाँ जाने का मौका मिला। तो इन 10-15 दिनों में देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर भी कई पहाड़ी इलाके, वहाँ पर भी जहाँ सत्संग में पहुँचे, अच्छा में एक स्थान है, तो कहने लगे ये 2 दिन से चले हुए, अपने घर से 2 दिन चलते आ रहे हैं इस प्रकार से सत्संग के लिए और समागम के लिए। और उन तक भी वो सत्य पहुंचा तो किसी ने वहाँ उपकार किए जो उनके गांव तक गया इतनी दूर चलकर। तो इस प्रकार से ऐसे उपकारी हृदय, वाकई ही अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ऑल लेबर दैट इज बीइंग डन टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी हैज़ डिग्निटी एंड इम्पॉर्टेंस। केस जो यत्न किए जाते हैं इस प्रकार से ये जागृति लाने के लिए, ये एक ऊंची अवस्था लाने के लिए, अपलिफ्ट मैनकाइंड, इसको ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए जो भी जिस रूप में भी यत्न किए जाते हैं, दैट हैज़ डिग्निटी, दैट हैज़ इम्पॉर्टेंस। दुनिया के तमाम चीज़ों के बनिस्पत इस पहलू की अहमियत है। तो इस प्रकार के योगदान दातार कृपा करे और अधिक होते चले जाएं, ताकि अंधकार मिटता जाए, चारों ओर उजाला ही उजाला होता जाए। सत्संगत जी धन्य।